नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। पश्चिम एशिया में दो सप्ताह के युद्ध विराम के बावजूद इसराइल के लगातार हमलों में लेबनान में मृतकों की बढ़ती संख्या पर भारत ने गहरी चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को देखते हुए मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक है।
भारत ने हमेशा नागरिकों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना और देश की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। लेबनान में हमारा दूतावास भारतीयों की सुरक्षा के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
सरकार ने देश की बिजली और ऊर्जा जरूरतों की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। नई दिल्ली में एक अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में विद्युत मंत्रालय के अपर सचिव पीयूष सिंह ने ये जानकारी दी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में घरेलू एलपीजी और ईंधन की आपूर्ति स्थिर है। इजरायली सेना और हिजबुल्ला ने लेबनान सीमा पर एक दूसरे पर हमले किए। हिजबुल्ला ने कहा कि उसने युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में इजरायल के हमलों के जवाब में इजरायली क्षेत्रों पर हमले किए। ईरान ने कहा कि युद्ध विराम लेबनान पर लागू होना था। वहीं इजरायल और अमरीका का कहना है कि लेबनान युद्ध विराम समझौते में शामिल नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य कल भी लगभग बंद रहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान में शांति वार्ता से पूर्व ईरान को अमेरिका के साथ चालबाजी नहीं करने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री वेंस को 6 सप्ताह पहले शुरू हुए युद्ध का समाधान तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि वैश्विक व्यवस्था गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और हिंद महासागर के देशों को आने वाले कठिन समय के लिए तैयार रहना चाहिए। मॉरिशस में आयोजित 9वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि आज के समय में समुद्री अवरोध वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय है। सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI के तीसरे चरण के तहत 52 नए आवेदनों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इन आवेदकों ने 6,708 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इससे 21,186 करोड़ रुपए का कारोबार अपेक्षित है। स्वीकृत प्रस्तावों से वस्त्र क्षेत्र को विशेष रूप से मानव निर्मित फाइबर और तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये निवेश घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाएंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और वैश्विक वस्त्र बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करेंगे। वस्त्र उद्योग के लिए उच्च मूल्य वाले उत्पादन को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और देश में रोजगार के अवसर पैदा करना इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। एशियाई विकास बैंक ADB ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। ADB के एशियाई विकास आउटलुक के अनुसार मजबूत घरेलू मांग, आसान वित्त पोषण स्थितियों और भारतीय वस्तुओं पर अमरीकी टैरिफ में कमी की वजह से चालू वित्त वर्ष में भारत में विकास मजबूत रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में इस वर्ष और अगले वर्ष कमी आएगी। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक शिवधर रेड्डी ने तेलंगाना राज्य समिति और PLGA के शेष सदस्यों के आत्मसमर्पण के बाद तेलंगाना को सशस्त्र माओवादी संगठनों से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया है। ये उपलब्धि राज्य के लिए वामपंथी उग्रवाद को निष्क्रिय करने में एक रणनीतिक जीत है। PLGA बटालियन कमांडर सोडी मल्ला सहित कुल 42 माओवादियों ने 36 हथियारों और 800 ग्राम सोने के साथ आत्मसमर्पण किया। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाताओं की संख्या में 84 लाख से अधिक की वृद्धि हुई और ये बढ़कर 13,39,00,000 हो गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया है। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 201 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 18 ओवर में 4 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।